No, in many churches they don't have meetings for married couples.
बहुत से कलीसियाओं में शादीशुदा बहनों और भाइयों के लिए मीटिंग नहीं होती है.
But I believe in the time in which we live, we need to understand God's purpose for the home.
पर जिस समय हम रह रहे, मुझे लगता है कि परमेश्वर का हमारे परिवार के प्रति क्या इच्छा है, हमें जानना जरूरी है.
Because everywhere I see a tremendous attack on Christian homes by the devil.
क्योंकि मुझे लगता है कि शैतान का मसीह परिवारों के ऊपर बड़ा हमला है.
Right from the time God established the first home.
शुरुआत से, जब से परमेश्वर ने पहला घर बनाया.
That was Adam and Eve. Adam and Eve.
आदम और हवा के समय.
As soon as they were united in marriage, we read immediately that the devil came. Next chapter.
जैसे हम पढ़ते हैं कि उनका शादी हुआ, दोनों का एक हुआ, उसके इमीडिएट साथ में हम पढ़ते हैं कि शैतान का आगमन हुआ.
So the devil was just waiting for them to be married to try and confuse their life.
शैतान इंतजार कर रहा था कब उनकी शादी होती है और वो उनके जीवन में प्रवेश करे.
It's the same today.
आज भी ऐसा ही है.
We mustn't forget that the Bible begins with Satan attacking a Christian home.
हमें भूलना नहीं चाहिए कि शैतान की शुरुआत मसीह परिवारों का हमला करने से होती है.
His aim was not only to separate them from God, but also to separate them from each other.
उसका केवल उद्देश्य शैतान का ये नहीं था कि उन्हें परमेश्वर से अलग करे, पर एक दूसरे से भी अलग करे.
And how do we know that Satan came between them?
और हम कैसे जानते हैं कि शैतान उन दोनों के बीच में आया?
Because as soon as God comes and asks Adam, "Did you eat of the tree?"
जैसे ही परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तूने उस झाड़ के फल को खाया?
He points at his wife and says, "She's the cause of the problem."
और आदम ने उत्तर दिया कि हवा जिसे तूने मुझे दिया है, वो इसका कारण है.
So we find that that's what sin brings. Sin immediately makes us accuse others.
और इसी तरह हम देखते हैं कि पाप हमें दूसरों को दोष करने के लिए कार्य करता है.
एंड दैट टेंडेंसी टू अक्यूज द वाइफ और अक्यूज द हस्बैंड हैज कम डाउन थ्रू ऑल दीज 6000 इयर्स.
और इन 6000 सालों में ये धारणा पत्नी का पति को और पति का पत्नी को दोष लगाने का आरंभ हुआ है.
एंड इफ वी से दैट जीसस हैज सेव्ड अस फ्रॉम सिन,
और अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाया है,
we have to ask ourselves whether Jesus has saved us from this poison of accusing one another.
तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस जहर से, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले जहर से बचाया है क्या?
Adam could have said, "Lord, I'm sorry, I ate that tree."
आदम ये कह सकता था, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने उस फल को खाया है.
There was no need for him to blame his wife.
उसे कोई जरूरत नहीं थी पत्नी पर दोष लगाने की.
The wife didn't force his mouth open and push the fruit down.
हवा ने उसे जबरदस्ती नहीं किया था मुंह खोलकर उसे फल खिलाने के लिए.
So what is the need to say my wife gave the fruit?
तो ये क्या जरूरत था कि ये कहना कि हवा ने मुझे बहका दिया?
But then we see something of the evil of Satan's nature.
यहां से हम देखते हैं कि शैतान का जो बुरा दुष्ट स्वभाव है,
दैट वी आर नॉट एबल टू सी आवर ओन फॉल्ट इनिशियली,
कि हम शुरुआत में अपना दोष नहीं देखते.
इवन व्हेन स्टैंडिंग बिफोर गॉड,
जबकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं तभी भी.
दैट्स अमेजिंग दैट वी कैन स्टैंड बिफोर गॉड एंड स्टिल नॉट सी आवर ओन फॉल्ट.
ये बहुत अचंभे वाली बात है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं फिर भी अपना दोष नहीं देखते.
सो इट इज दिस स्पिरिट ऑफ accusing that started with Adam that brings divisions in the home.
ये आदम के समय से शुरू हुआ दोष लगाने वाला आत्मा का कार्य अलग करने का.
And when there are divisions in the home, the children also go away from God.
जब घरों को पति पत्नी को अलग करने का कार्य होता है तो बच्चे भी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं.
And that's the next thing we read, that Adam's first son became a murderer.
यहीं से हम देखते हैं कि आदम का पहला पुत्र हत्यारा बना.
Killed his own brother.
अपने भाई को मारने वाला.
So, if you want to bring up your children properly, you better learn as husband and wife to live together.
अगर हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में लाना है तो पति पत्नी हमें सीखना है परमेश्वर के साथ चलना, मेल में चलना.
बिकॉज द डेविल ट्राइज टू ब्रिंग अ सेपरेशन सो दैट ही कैन कम बिटवीन इनटू द हाउस.
क्योंकि शैतान अलगाव पति पत्नी करना चाहता है कि उसके प्रवेश मिले परिवार के अंदर.
एंड बोथ ऑफ यू मे बी स्ट्रांग बट द चिल्ड्रन आर वीक.
और दोनों पति पत्नी मजबूत होंगे लेकिन बच्चे कमजोर हैं.
सो द डेविल गेट्स द चिल्ड्रन फर्स्ट.
तो पहले आक्रमण शैतान का बच्चों पर होता है.
एंड आई हैव सीन दैट इन मेनी होम्स.
और ये मैंने बहुत परिवारों में देखा है.
दैट वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर डिवाइडेड इट्स डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू बी स्पिरिचुअल.
जब पति पत्नी का अलगाव होता है बच्चों को भुगतना पड़ता है.
एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द चिल्ड्रन. दे ब्लेम ईच अदर. नाउ दे स्टार्ट ब्लेमिंग द चिल्ड्रन.
तो पहले वे एक दूसरे को दोष लगाते हैं फिर बच्चों पर दोष लगाते हैं.
सैतान इज द ग्रेट एक्यूजर.
शैतान बड़ा दोष लगाने वाला है.
ही इज ऑलवेज एक्यूजिंग.
वो हमेशा दोष लगाता है.
एंड वी हैव गॉट दैट पॉइजन इन आवर सिस्टम फ्रॉम एडम.
और ये हमारे अंदर आदम से आया हुआ एक तरीका है.
टू मी दिस इज वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस ऑफ बीइंग इन एडम एंड इन क्राइस्ट.
और ये बहुत बड़ा फर्क है आदम में रहना और मसीह में रहना.
यू नो वी ऑल से वी हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम एडम एंड ग्राफ्टेड इनटू क्राइस्ट.
हम सब कहते हैं कि हम आदम से कट गए हैं और मसीह से जुड़ गए हैं.
बट हैव वी बीन कट ऑफ फ्रॉम दिस पॉइजन वी हैव गॉट फ्रॉम एडम.
पर क्या हम उस जहर से जो आदम से हमें मिला है अलग हुए हैं?
यू नो इट सेज अबाउट सैतान इन रेवलेशन 12.
प्रकटीकरण 12वें अध्याय में शैतान के विषय में पढ़ते हैं.
Revelation chapter 12 and verse 10.
12वां अध्याय प्रकटीकरण का 10वां वचन.
Where in the middle of that verse it says Satan is called the accuser of our brethren who accuses them day and night before God.
जिसमें यह बताया गया इस वचन के मध्य में कि शैतान भाइयों का दिन और रात निंदा करने वाला है.
Who accuses them day and night before God.
जो परमेश्वर के सामने भाइयों को दिन और रात निंदा करता है.
He works 24 hours a day.
ये दिन में शैतान 24 घंटे कार्य करता है.
And you know, he may tell a lie to us, but he can't tell a lie to God.
हम अपने आप को झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकते.
No, Satan tells us lies.
शैतान हमें झूठ बोलता है.
But he can't tell a lie to God. But he cannot. Satan cannot tell.
शैतान परमेश्वर को झूठ नहीं बता सकता.
So he cannot go and tell, say, God. You know that child of yours murdered somebody.
तो ये नहीं कह सकता परमेश्वर ये तेरा बेटा हत्यारा है.
No, because that's a lie.
क्योंकि ये झूठ है.
So what does Satan accuse before God?
तो शैतान किस चीज का दोष परमेश्वर के सामने लगाता है?
Only what is true.
जो सच है वही दोष लगाता है.
He can't tell God lies about me.
वो ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मेरे लिए झूठ बोलता है.
No. He can't tell God lies about me.
परमेश्वर के सामने यह नहीं कह सकता कि मैं झूठा हूं.
No. शैतान परमेश्वर को मेरे बारे में झूठ नहीं बोल सकता.
शैतान परमेश्वर को हमारे बारे में झूठ नहीं बताता.
वो सच ही बोलता है. He speaks the truth. So he can only say what I actually did wrong.
तो वो यही कहता है कि जो मैंने सच में हकीकत में गलत किया है.
Now why am I saying that?
हम ये क्यों कहते हैं?
Because I've heard many times when people accuse somebody.
क्योंकि लोग जब मैंने देखा है दूसरे को दोष लगाते तभी.
They find comfort in the saying that, but I'm speaking the truth.
तो वे अपने दिल में एक सांत्वना पाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ.
Well, Satan also speaks the truth to God, but it's accusation.
लेकिन शैतान भी सच ही कहता है लेकिन वो एक दोष है.
So we don't find comfort that what I'm speaking is the truth.
हमें इस बात से सांत्वना नहीं लेनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ दोष लगा रहा हूँ वो हकीकत है सच है.
That's not the important point.
ये महत्व का मुद्दा नहीं है.
What is your spirit?
आपका आत्मा क्या है?
Is it a spirit of love?
वो प्रेम का आत्मा है.
Or is it a spirit that wants to tear down that person?
क्या यह आत्मा आपका ऐसा है कि दूसरे आदमी को नीचे करना?
We can tear down a person speaking the truth.
हम उस आदमी को नीचे कर सकते हैं जो सच कह रहा है.
एंड दैट्स बिकॉज़ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ हेट्रेड इन आवर हार्ट फॉर दैट पर्सन.
ये इसलिए होता है कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर नफरत बाकी है.
यू मे से that you love somebody.
हम ये कह सकते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं.
But the Bible says in 1 Peter 4 in verse 8 that love covers a multitude of sins.
पर पत्रस 1:4 में परमेश्वर कहता है
4:8 में
4:8 में पत्रस पहला अध्याय पहला पत्रस 4:8 में परमेश्वर कहता है कि प्रेम बहुत से अपराधों को ढाप देता है.
Covers it.
ढाप देता है.
So if you really love, you will cover.
अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आप अपराध को ढापेंगे.
For example.
उदाहरण की तरह.
Supposing your daughter is fooling around with some boy.
आपकी बेटी किस भाई के साथ
किसी लड़के के साथ going around with some boy.
उसका कुछ अफेयर जिसे कहते हैं किसी भाई के साथ.
You won't tell everybody about it.
आप इस विषय में हर एक को नहीं बताएंगे.
You may know it's there.
आप ये जानते होंगे कि ये हकीकत है.
But you'll try your best to cover it.
लेकिन आप बहुत अच्छी कोशिश करेंगे उसे ढाप देने की छुपाने की.
Because you love your daughter.
क्योंकि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं.
But if it's somebody else's daughter.
लेकिन किसी और की बेटी.
Then you'll talk about it.
अगर ऐसी हो तो आप उसके लिए बात करेंगे.
Even if it is somebody else in the church.
अगर वो कोई कलीसिया की बहन भी रहेगी.
So you know there's very little love among believers even in the church.
तो कलीसिया में भी भाइयों और बहनों के अंदर बहुत छोटा सा थोड़ा सा प्रेम है.
And even among husband and wife.
आप पति और पत्नी में भी देखते हैं.
If you're not careful here, the devil will come right in.
अगर इस बात में सचेत नहीं है तो शैतान प्रवेश करेगा.
What does Jesus do? Does he shut his eyes to all the faults in his children?
यीशु मसीह क्या करता है कि अपनी आंखें बंद कर देता है अपने बच्चों के दोषों को देखकर?
No, we read in Hebrews 7.
इब्री 7 में हम पढ़ते हैं.
In verse 25.
25वें वचन में.
He always lives to make intercession for them.
वो हमेशा ऐसों के लिए मध्यस्थता करता है.
So here are two things going on 24 hours.
तो यहाँ दो चीजें लगातार 24 घंटे हो रही हैं.
That Satan is always accusing them, accusing us.
शैतान हमारे लिए परमेश्वर के सामने दोष लगाता है.
And Jesus is our advocate, always praying for us.
और यीशु मसीह हमारा वकील हमारे लिए मध्यस्थता करता है प्रार्थना करता है.
So we see here that I do something wrong first.
और यहाँ हम देखते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ.
And when Satan sees it, he immediately accuses.
ये शैतान मुझे करते हुए देखकर मेरी निंदा परमेश्वर के सामने करता है.
Jesus sees it and he immediately prays.
यीशु मेरे अंदर यही दोष देखता है लेकिन परमेश्वर के सामने मेरे लिए प्रार्थना करता है.
Can you see this picture?
यहाँ आप परमेश्वर का शास्त्र देख सकते हैं.
I'm doing something wrong.
मैं कुछ गलत कर रहा हूँ.
Satan sees it and immediately accuses.
शैतान देख रहा है और तुरंत उसको परमेश्वर के सामने.
Jesus also sees it.
परमेश्वर भी देख रहा है.
Immediately prays.
वो लेकिन जल्द से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है.
What do you do when you see that?
हम क्या करते हैं जब हम ऐसा देखते हैं दूसरों के जीवन में?
You know the answer.
आपको उत्तर पता है.
And in that moment you know whether you're like Satan or whether you're like Jesus Christ.
ये उस समय बताता है कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं या शैतान से.
Whether you're like Satan. शैतान के जैसे हैं कि प्रभु यीशु के जैसे हैं.
आप प्रभु यीशु को पसंद करते हैं शैतान को
पसंद नहीं.
Like
means
same. हाँ. आप शैतान के जैसा है या परमेश्वर प्रभु यीशु को जैसे हैं?
We know because Jesus is praying and Satan is accusing. Jesus is praying.
हाँ, हमको पता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है.
And Satan is accusing.
और शैतान दोष लगा रहा है.
So in our home.
इसलिए हमारे घर में.
You may say that you love your husband or your wife.
हम कह सकते हैं हम पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम करती है.
Are you behaving like Christ or the devil?
क्या हम यीशु मसीह जैसा वर्ताव कर रहे हैं या शैतान जैसा?
I've always told people who want to go and correct somebody.
मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूँ जो लाकर दूसरों को सुधार करते हैं.
Don't do it before you've prayed for them.
ऐसा मत करिए पहला उनके लिए प्रार्थना कीजिए.
After you pray for them, then you are fit to go and correct them.
पहले प्रार्थना करेंगे आप और फिर आप ठीक है उनको समझाने और उनके लिए सुधार लाने के लिए.
If you don't pray for them, you're not fit to correct them.
अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते तो आप उनके लिए योग्य नहीं है उनको सुधार लाए.
The Lord has got every right to correct us because he's praying for us.
प्रभु यीशु मसीह को ये पूर्ण अधिकार है हमको करेक्ट करने का हमारा सुधार करने का क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करते
हैं. This is one of the very important things in married life.
ये शादीशुदा वैवाहिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट महत्व की बात है.
You must pray, Lord, this first thing that Adam did प्लीज गेट इट आउट ऑफ आवर होम।
परमेश्वर से हमारी ये प्रार्थना करना कि जो आदम ने पहला किया वो हमारे जीवन से हमारे परिवार से दूर हो जाना।
व्हाट इज दैट? ब्लेम योर वाइफ।
वो क्या था कि अपनी पत्नी को दोष लगाना।
ब्लेम योर हस्बैंड।
अपने पति को दोष लगाना।
नो आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड प्रिटेंड दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग।
हम ये बहाना नहीं करना या दिखावा ना करना कि वो गलत नहीं कर रहा है।
Yeah, we need to correct one another.
हाँ, ये जरूरत है कि हम एक दूसरे का सुधार करें।
All I'm saying, first pray.
पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आप प्रार्थना करो।
And cleanse your spirit that you correct in a spirit of love.
और अपने आत्मा को शुद्ध करो कि आप सुधार लाने के मन से, प्यार के मन से आप ये कर रहे
हैं। Ephesians chapter 4.
इससे इसका चौथा अध्याय देखेंगे।
It's a very beautiful verse here.
बहुत ही उत्तम शब्द वहाँ पर है।
Verse 15.
पंद्रहवा वचन।
It says, if you speak the truth in love, you will grow up to become like Jesus Christ more and more.
अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो आप यीशु मसीह के जैसा।
Speak.
अगर आप बोल रहे हैं वास्तव में सच। इससे उसका चौथा अध्याय पंद्रह वचन हम पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए।
या इन प्रेम, प्रेम से सच बोलो।
हाँ, प्रेम से सच बोलते
हुए। ट्रूथ इन लव।
प्यार से सच बोलिए।
देन वी विल ग्रो अप टू बिकम लाइक क्राइस्ट।
तब हम मसीह जैसा बढ़ते रहेंगे।
सी द बैलेंस देयर।
अब हाँ,
दैट यू हैव टू डू बोथ।
तालमेल देख रहे हैं, हमको दोनों करना है।
He doesn't say you shouldn't speak the truth.
हम ये नहीं कहते कि आपको सच नहीं बोलना है।
स्पीक द ट्रूथ टू योर हस्बैंड एंड वाइफ, टू योर हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड एवरीबॉडी।
हर एक सच बोलो, पति पत्नी बच्चे।
इफ यू डोंट, इफ यू कांट स्पीक इट इन लव, डोंट स्पीक इट।
लेकिन ये अगर प्यार की रीति से आप नहीं बोल सकते तो आप मत बोलिए।
अ लॉट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन इन लव।
परमेश्वर ऐसा सच नहीं चाहता।
अ लॉट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन इन लव।
बहुत सा सच प्यार की रीति पर नहीं बोला जाता।
एंड देन इट डज द वर्क ऑफ द डेविल।
और वहां शैतान का काम आरंभ होता है।
सो इफ वी वांट टू बी ऑन गॉड्स साइड।
और अगर हम परमेश्वर के पक्ष में होना चाहते हैं।
वी मस्ट वेट टिल वी हैव कम इन आवर स्पिरिट टू लव, देन वी कैन स्पीक ऑल द ट्रूथ।
तब हम सच्चाई बोल सकते हैं जब हम उस परमेश्वर के प्रेम की आत्मा में आ जाते हैं।
देन वी विल ग्रो अप।
तब हम बढ़ेंगे।
देन वी विल ब्रिंग दैट स्पिरिट इनटू आवर होम।
तब उस आत्मा को हम हमारे घर में ला सकेंगे।
यू डोंट रियलाइज दैट व्हेन यू से समथिंग व्हिच इज नॉट इन अ स्पिरिट ऑफ लव, यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग अ सैटेनिक स्पिरिट इनटू योर हाउस।
आप ये नहीं जानते होंगे कि जब आप प्रेम की रीति से सच नहीं बोल रहे तो शैतान को अपने घर में अवसर देते हैं।
व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग इट इन लव।
अगर आप उस सच को प्रेम की रीति पर नहीं बोल रहे हैं।
सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
तो हमें बहुत ही सावधान रहना है।
एंड इफ यू आर नॉट श्योर देन इट्स बेटर टू कीप क्वाइट।
तो अगर आपको ये पक्का नहीं है तो आप अच्छा है चुप रहे।
बिकॉज इफ यू कीप क्वाइट एट लीस्ट वी वॉन्ट डू एनी डैमेज।
अगर हम चुप रहेंगे तो हम कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे।
बिकॉज आवर होल एम,
क्योंकि हमारा पूरा मकसद
इवन इन स्पीकिंग द ट्रूथ इज टू सेट समथिंग राइट।
सच बोलते समय भी हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सही बोले।
एंड इफ यू डू इट इन लव इट विल बी राइट।
अगर हम ये प्यार से करेंगे तो हम सही करेंगे।
So that's one of the first things we got to learn from Adam and Eve.
तो ये पहली बात हमें आदम और हवा से सीखनी है।
The other thing we see there in Genesis 3.
और दूसरी बात हम उत्पत्ति तीसरे अध्याय में देखते हैं।
In verse 12.
बारहवें वचन में।
First thing he blamed his wife.
पहली बात उसने अपनी पत्नी को दोष लगाया।
The second thing we see.
और दूसरी बात हम देखते
हैं। Same verse was he blamed God.
उसने परमेश्वर पर भी दोष लगाया।
Saying you gave me this wife.
उसने यह कहा परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर के, तूने मुझे यह पत्नी दिया।
You need to ask yourself whether there's anything in your heart which is like a complaint against God.
हमें हमारे हृदय में अपने आप को जांचना है कि अगर हम जो कुछ कह रहे हैं क्या हम परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं।
You know, deep down in your heart, if you begin to think, oh, why did I marry this woman? Or why did I marry this man?
अगर आप हृदय की गहराई में कभी ये सोच रहे हैं कि क्यों मैंने इस पत्नी पर और लड़की से शादी की, या लड़की सोचती है मैंने ये लड़के से शादी की।
यू मे थिंक, ओह, इफ आई हैड नॉट मैरिड दिस मैन, सम अदर मैन मे हैव बीन बेटर।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस भाई से शादी नहीं की होती या इस बहन से तो कुछ कदाचित अच्छा होता था।
सम अदर, इफ आई हैड मैरिड सम अदर वुमन, दैट शी वुड हैव बीन अ बेटर वाइफ।
अगर मैं दूसरी किसी स्त्री से शादी करता तो अच्छी पत्नी बन सकती थी।
Perhaps you're wrong.
आप गलत हो सकते हैं.
If you had married somebody else, your life may have been much worse.
अगर आप किसी दूसरी से विवाह कर रहे थे तो आपकी परिस्थिति, आपकी जीवन इससे बदतर हो सकता था.
So there can be a spirit of complaining against God, saying, "Why did you allow this to happen in my life?"
ये शिकायत करने का परमेश्वर के विरुद्ध एक आत्मा है जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे द्वारा कार्य करता है.
Why did you allow these circumstances to happen in my life?
ये परिस्थितियों को आपने क्यों अनुमति दिया मेरे जीवन में होने के लिए?
And you know, in Indian marriages,
हम देखते हैं हिंदू शादियों में,
हिंदुस्तानी
शादियों में,
it's not like Western marriages.
ये पश्चिमी शादियों की जैसा नहीं होता.
Because here, when we get married, we don't just get married to a person, we get married to a whole family.
क्योंकि हम यहाँ किसी एक व्यक्ति से शादी हमारी नहीं होती, लेकिन एक पूरे परिवार से हमारी शादी होती है.
That's part of our culture.
ये हमारे कल्चर का एक भाग है.
It's not so much in the West.
ये पश्चिमी देशों में ज्यादा नहीं है.
Because there they break away from their parents very soon.
क्योंकि वहाँ शादी के पश्चात भी अपने परिवार से, अपने माता पिता से जल्दी अलग हो जाते हैं.
I don't believe that is right.
मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही है.
But I don't believe we are right either.
मैं ये भी विश्वास नहीं करता हूँ कि ये सही है.
See, Indian culture and Western culture are both wrong.
हिंदुस्तानी कल्चर और पश्चिमी कल्चर दोनों गलत हैं.
Christian culture is somewhere between these two.
मसीही कल्चर ये दोनों के बीच में है.
We see the example in Jesus.
ये हम यीशु मसीह में उदाहरण देख सकते हैं.
The Bible says that when we get married, we are to be detached from our parents.
परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम शादी करते हैं, हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से हमारा अलगाव होना है.
So that we can get be united to our partner.
तो हम हमारे पत्नी से या पति से एक हो सकते हैं.
And that's in Genesis 2:24.
ये उत्पत्ति 2:24 में है.
That you leave your father and mother and cleave to your wife. Leave your verse 2:24.
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा.
सो यू हैव टू लीव बिफोर यू कैन जॉइन टू योर वाइफ.
तो यहाँ हमें माता पिता से पहले अलग होना है, पत्नी से एक होने से पहले.
नाउ लीव डजंट मीन दैट यू डोंट केयर फॉर देम.
ये अलग हो जाना ये नहीं दर्शाता कि हम उनका चिंता नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं सोचेंगे.
बिकॉज वी मस्ट ऑनर आवर फादर एंड मदर इवन इफ वी आर 60 इयर्स ओल्ड.
ये हमारा परमेश्वर का वचन है कि हमें अगर 60 साल भी हम हो गए तो अपने माता पिता का हमें आदर करना है.
That is till the end of their life, we must honor them.
उनके जीवन के अंत तक हमें उनका आदर करना है.
Because they cared for us when we were helpless babies.
उन्होंने हमारी मदद की, हमारी देखभाल की जब हम मजबूर थे, हम छोटे थे.
So when they are old, we have to care for them.
जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा काम है उनको मदद करना.
This means that we must not allow them to run our life.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ये अधिकार दे हमारे जीवन को चलाने का.
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग.
ये बहुत ही आनंद कारण है.
आई आस्क पीपल दिस क्वेश्चन समटाइम्स.
मैं ये लोगों को कई बार एक प्रश्न पूछता हूँ.
कैन यू टेल मी द फर्स्ट कमांडमेंट इन द बाइबल.
आप मुझे परमेश्वर के वचन में पहला आज्ञा बता सकते हैं.
नॉट व्हाट ही टोल्ड एडम बिकॉज दैट इज फॉर द गार्डन ऑफ ईडन, वी आर नॉट देयर.
ये आदम को जो प्रश्न की आज्ञा दिया वो नहीं, क्योंकि वो आदम के समय आदम की वाटिका में था.
सो दैट डजंट अप्लाई टू अस बिकॉज दैट डजंट अप्लाई टू अस बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द गार्डन ऑफ ईडन.
हाँ, ये हम पर लागू नहीं होता है क्योंकि हम आदम की वाटिका में नहीं रह रहे हैं.
बट व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट इन द बाइबल.
लेकिन परमेश्वर का वचन में पहला आज्ञा क्या है.
एंड द ओनली कमांडमेंट गिवन बाय गॉड बिफोर सिन केम इनटू द वर्ल्ड.
पाप इस जगत में आने से पहला परमेश्वर का पहला आज्ञा.
ओनली वन कमांडमेंट.
एक ही आज्ञा.
You know what it is?
आप जानते हो क्या है?
It's this one we just read. What we just read.
ये जो हमने पहला पढ़ा.
Genesis 2:24.
उत्पत्ति 2:24.
I've always thought about the wisdom of God.
मैं हमेशा परमेश्वर की बुद्धि के लिए सोचता रहता हूँ.
That in His great wisdom, the first commandment He put in the Bible is, leave your earthly parents and cleave to your wife, cleave to your husband.
बहुत ही उत्तम ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर ने यह पहला आज्ञा दिया कि पति पत्नी एक होने से पहले अपने माता पिता से अलग होना है.
एंड द मोर आई लिव इन इंडिया द मोर आई सी द प्रॉब्लम्स आई कैन सी द विजडम ऑफ गॉड इन दैट कमांडमेंट.
मैं उस आज्ञा में परमेश्वर की बहुत बुद्धि देखता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और हिंदुस्तान में इस वचन के कारण, आज्ञा के कारण बहुत ही दुविधा पाता हूँ.
दिस इज द नंबर वन कमांडमेंट डिसओबेड बाई married people in India.
ये पहला आज्ञा है जो तोड़ा जाता है हिंदुस्तान में लोगों से, शादीशुदा लोगों से.
They disobey.
ये मान्य नहीं करते, आज्ञा को उल्लंघन करते हैं.
And that is the cause of many, many, many problems.
ये बहुत ही बड़े बड़े समस्याओं का कारण होता है.
People go to two extremes.
दो तरह के, दो रास्तों में लोग चले जाते हैं.
Some become slaves of their parents, some neglect their parents totally.
कोई अपने माता पिता का पूरा इनकार कर देता है, कोई अपने माता पिता का पूर्ण गुलाम हो जाता है.
But what is the balance?
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
Look at the life of Jesus.
यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे.
Even when he was hanging on the cross, dying and suffering.
जब वो क्रूस पर मर रहा था और दुख और पीड़ा दर्द सहन कर रहा था.
His mind thought about his mother. I must make some provision for my mother to be taken care of.
उसने अपनी माँ के लिए इतनी पीड़ा में भी सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ उपाय करके
जाऊँ. That is an amazing example that in the midst of his own suffering,
उसकी अपनी
thought about caring for his mother.
उसकी अपनी पीड़ा में ये बहुत ही अद्भुत है. उसने अपनी माँ के विषय में सोचा और चिंता किया.
She was a widow. Joseph had died long ago. Otherwise, he wouldn't have thought about that.
हम जानते हैं कि वो मरियम एक विधवा थी, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए सोचा.
He was the eldest son.
और वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा था.
And he took that responsibility seriously, even while he is suffering in pain.
और उसने वो जिम्मेदारी पूरी रीति से लिया, दुख और पीड़ा क्रूस पर सहती.
That is an amazing example for us to follow.
ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है हमारे लिए.
To honor our parents and care for them.
हमारे माता पिता का आदर करना, उनकी चिंता करना.
At the same time.
और इसी समय.
As long as Jesus was in his mother's house.
यीशु मसीह जब अपने माँ के घर में था.
He obeyed her.
वो उसकी आज्ञा पालन करता रहा.
But the moment he left.
जब उसने उस क्षण से छोड़ दिया घर,
started his ministry,
उसकी सेवा उसने आरंभ की.
At Cana,
कनान देश में,
Cana, the marriage of
Cana, जहां ब्याह का विकल्प लिखा गया है.
He told his mother, "What have I got to do with you? Don't interfere with my ministry."
तब उसने अपनी माँ से उसका सुझाव पाते समय कहा, मुझे आप रुकावट मत कीजिए मेरी सेवा में.
Can you say that to your mother?
क्या आप अपनी माँ से यह कह सकते हैं?
Mom, please don't interfere in our marriage.
माँ, क्षमा चाहता हूँ, मेरे शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश न करें, दखल न दें.
Please leave us to run our own life.
मैं क्षमा चाहता हूँ और कहता हूँ, हमें हमारा जीवन चलाने दीजिए.
Dad, please leave us to run our own life.
पिताजी, हमें क्षमा कीजिए, हम हमारा परिवार घर हमें चलाने दीजिए.
And if they argue with you, you can ask them one more question.
अगर वे आपसे वाद विवाद करते हैं तो आप उनसे और एक सवाल कर सकते हैं.
मम, डिड यू लाइक इट व्हेन योर मदर इन लॉ इंटरफेयर्ड इन योर लाइफ?
मम्मी, आपको ये पसंद था जब आपकी सास आपके जीवन में हस्तक्षेप करती थी?
और डैड,
और आपके ससुर जी?
डैड, व्हेन योर फादर इन लॉ ट्राइड टू टेल यू टू डू समथिंग, डिड यू लाइक इट?
या पिताजी से आप पूछ सकते हैं, क्या पिताजी आपको पसंद था जब आपके ससुर आपके वैवाहिक जीवन में दखलअंदाजी करते थे?
See, Indian parents are very interfering type of parents.
हिंदुस्तानी माता पिता इंटरफेयर करने वाले, मध्यस्थ करने वाले माता पिता है.
So that's the other thing we can learn from that first passage.
और ये हम पहले पैसेज से सीख सकते हैं.
Don't blame God for anything.
किसी भी परिस्थिति के लिए परमेश्वर को दोष मत लगाइए.
Don't wish that you had another husband or another wife.
ये कल्पना भी नहीं कीजिए, सोचिए मत कि आपको अलग दूसरी पत्नी होती है, दूसरा पति होता.
God has arranged. See, marriage is not a thing where everything will go smoothly.
शादी ऐसी जोड़ नहीं है, ऐसा विवाह चीज नहीं है कि बहुत चीजें आराम से सुख से चलेंगी.
Our whole life is not like that.
हमारा पूरा जीवन भी ऐसा नहीं है.
God allows our life to be like that stormy sea. The lake of Galilee where the boat was tossed around.
परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन को, हमारे पूरे जीवन को ऐसा होने देता है जैसा गलील में वह नाव समुद्र के लहरों में उबड़ खाबड़ हो रही थी.
But the wonderful thing was Jesus was in the boat.
लेकिन बहुत ही आनंद की बात थी कि यीशु मसीह उस नाव में था.
We think that if Jesus is in the boat, there won't be any storm.
और वो सोचते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, यीशु मसीह हमारे नाव में है, कोई तूफान नहीं आएगा.
There will be storm.
हाँ, वहाँ तूफान हो गए.
There'll be storm in our life, there'll be storm in our married life, there'll be storm in the church.
कलीसिया में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे परिवार में तूफान आंधी हो गए.
But Jesus can still those storms. That's the gospel message.
लेकिन शुभ समाचार का मैसेज यही है कि यीशु मसीह उसे रोक सकता है, थाम सकता है.
So, what sort of life would you like? A smooth life without any difficulties, any problems, any trials?
तो किस तरह का जीवन आपको चाहिए बिना किसी मुसीबत संकट तकलीफ के?
That will be quite a boring life.
वो बहुत ही उबाऊ जीवन होगा.
Supposing the gospel stories were like this.
हम अंदाज लगाएंगे कि परमेश्वर के वचन की कहानियां ऐसी रहेंगी.
And Jesus went for a marriage in Cana.
यीशु मसीह काना देश में एक शादी में गए.
And there was plenty of food and wine. There was no problem. They had a good time and came back home.
वहाँ बहुत ही अच्छा दाखरस था, बहुत ही संख्या क्वांटिटी में था और अच्छा खाना था.
And they got into a boat and went across a lake. It was very smooth, so they had a good journey up to the other side.
और एक नाव में बैठकर वे सफर कर रहे हैं. वहाँ कोई आंधी तूफान नहीं, बहुत ही आराम से वे किनारे पर पहुँच गए.
And once there was 5,000 people he was speaking to.
और एक समय वो 5,000 लोगों को उपदेश दे रहा था उस समय.
But fortunately they had all brought their lunch packets with them, so they could all sit down and eat.
लेकिन योगायोग वो सब लोगों ने अपने अपने खाने के टिफिन हमारे अपने साथ लाए थे और खाने बैठ गए.
Even the Sunday school children will say, please don't tell us these boring stories. Who's interested?
रविवार के स्कूल के छोटे बच्चे भी अपने माँ पिता से हमसे ये कहेंगे, ये उबाऊ कहानी हमें मत सुनाइए.
What will be your testimony when you go to heaven?
आपकी साक्षी क्या रहेगी जब आप स्वर्ग जाएंगे?
We'll hear about Daniel who tells us how he was thrown to the lions and the lions shut their mouths.
ये ऐसा होगा कि किस तरह से डैनियल शेर के पिंजरे में डाल दिया गया और कैसा वहां से उसका बचा हुआ.
And how all the different how David killed Goliath, he'll tell us his testimony.
और वहां गोलियत के दाऊद ने कैसा मारा उसकी टेस्टिमोनी हमें बताई जाएगी.
And they'll say, brother, sister, you tell us your testimony now.
और वहां वे हमसे पूछेंगे, भाई और बहनों आपके जीवन का साक्ष्य बताइए.
I prayed that I'll have no problems in my life.
हम वहां उनसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी तनाव तकलीफ कष्ट नहीं था.
I never had any problem.
मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं थी.
And when I did have one problem, I complained so much that God never gave me any more problems in my life.
एक था कि मैं परमेश्वर से शिकायत करता था, मुझे कोई भी समस्या दुख पीड़ा नहीं दी थी.
I don't want a testimony like that.
मैं ऐसा साक्षी नहीं चाहता हूँ.
I want a testimony where I can tell hundreds of stories of all types of things that happened in my life and by the grace of God I overcame all of them.
मैं ऐसा साक्ष्य चाहता हूँ कि मैं बहुत सी हजारों सौ कहानियां ऐसा रही मेरे जीवन में परिस्थितियां जिनमें मैं विजय हुआ और परमेश्वर की महिमा किया.
Think if you had a very difficult mother-in-law.
सोचिए अगर आपको बहुत ही तकलीफ और कष्ट देने वाली एक सास है.
You tell people in heaven, your boy, you should have seen the mother-in-law I got.
और आप स्वर्ग में ये साक्षी देने पाओ कि आप कदाचित मेरी सासू से बर्ताव में आते.
Conquered her by love.
लेकिन मैंने उसे प्रेम से जीत लिया.
I decided that Jesus is more powerful than the devil.
मैंने ये देखा कि यीशु मसीह शैतान से बहुत ही शक्तिशाली है.
What a testimony that will be.
ये साक्ष्य कैसी होगी?
I'm not saying we should be foolish.
मैं ये नहीं कहता मूर्ख होना चाहिए.
But each situation may be different.
पर हर परिस्थिति अलग हो सकती है.
We need a lot of wisdom.
हमें बहुत ही बुद्धि चाहिए.
But what I want to say is this.
मैं ये कहना चाहता हूँ.
To me, every situation is a test. Who is stronger, Christ or the devil?
मेरे लिए हर एक परिस्थिति ये निर्णायक होती है कि कौन ताकतवर है, यीशु मसीह या शैतान.
When people do something wrong to you.
अगर कोई लोग आपके साथ गलत बर्ताव करते हैं.
Supposing they accuse you falsely.
अगर वो गलत झूठ मूठ आपको दोष लगाते हैं.
Who are they serving?
किसकी वो सेवा कर रहे हैं?
Christ or the devil?
यीशु मसीह की या शैतान की?
Definitely they are serving the devil if they accuse you falsely.
अगर आपको वो झूठ मूठ दोष लगा रहे हैं तो वो शैतान की सेवा कर रहे हैं.
See, as I've been serving the Lord now more than 40 years.
अगर मुझे 40 साल हुए मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ.
I know the devil hates me like anything.
और मैं ये जानता हूँ कि शैतान मुझे बहुत ही नफरत करता है.
But I'm not afraid of him.
पर मैं उससे डरता नहीं हूँ.
But because he hates me so much, he gets all types of people to accuse me of all types of wrong things.
और जब वो
false things.
जब मुझसे जलता है, शत्रुता रखता है, तो मेरे जीवन में सब झूठे लोग और ऐसे परिस्थितियां बनाता है.
But what's he is getting angry with them?
पर क्या वो उनसे क्रोधित है?
I don't get angry with them.
क्या मैं उनसे कभी क्रोधित नहीं होता?
I say this is the devil.
मैं यह कहता हूँ कि वो शैतान का कार्य है.
I want to now prove that Christ is greater than the devil.
अब यह मुझे सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि यीशु मसीह शैतान से ज्यादा शक्तिशाली है.
But most of the believers,
पर बहुत से विश्वासी,
they don't prove that.
ये सिद्ध नहीं करने पाते.
That fellow serves the devil.
ये भाई शैतान की सेवा कर रहा है.
They also serve the devil and hit back.
वे भी उसके रिटर्न में अपोज में उस शैतान का सेवा करते हैं.
Absolutely foolish.
बिल्कुल मूर्खता है.
See this lovely verse.
यहाँ हम उत्तम प्यारा वचन देखेंगे.
Romans chapter 12.
रोमियो इसका 12वां अध्याय.
Verse 21.
21वां वचन.
He's talking about your enemies. If your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink.
बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो.
Yeah, verse 20. If your enemy is hungry, feed him.
20वां वचन. यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला.
Overcome evil with good.
बुराई को भलाई से जीत लेना.
Which is stronger?
किससे ज्यादा, किसमें ताकत है?
Evil or good?
अच्छाई या बुराई?
Satan says evil is stronger.
शैतान कहता है बुराई ताकतवर है.
We say no.
यीशु कहता है नहीं.
Christ
is stronger. हम कहते हैं नहीं, यीशु मसीह ताकतवर है.
Good is stronger.
अच्छाई ताकतवर है.
The devil says prove it.
और शैतान कहता है ये सिद्ध करके
okay.
दिखाओ.
I'm going to prove it.
और मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा.
See, we must be in the place where nothing can take us out of love. Nothing can remove love from our hearts.
इन दिनों में हम देखेंगे कि कोई भी चीज हमारे हृदय से प्यार को नहीं निकालने पाएगी.
This is the real proof of being filled with the Holy Spirit.
ये सच्चा प्रूफ है पवित्र आत्मा से भरा रहने का.
That nobody can bring me out of love.
कोई भी मुझे प्रेम से अलग नहीं कर सकता.
Love must be my permanent address.
प्यार मेरी हमेशा की एक एड्रेस होनी चाहिए.
That I'm always there.
कि मैं हमेशा वहां हूं.
Never going to shift from there.
मैं इस प्यार से कभी भी मेरा पता अलग नहीं करने वाला हूं.
If I make a mistake,
अगर मैं गलती करता हूं,
I say, Lord, I'm sorry.
मैं परमेश्वर से कहता हूं मुझे क्षमा कर.
If I hurt somebody, I say, I'm sorry.
मैं किसको सुनता हूं, मैं किसको दुखाया है, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं.
See, that's the other thing we must learn as husband and wife to ask forgiveness from each other.
ये दूसरी बात है, हम सीखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से क्षमा मांगे.
We must see that sin, even a small one word that we speak which is hurtful, is like a thorn coming into our foot.
ये पाप, एक छोटा सा शब्द जो पाप का है वो ऐसा रहता है कि हमारे पैर में जैसा एक कांटा चुभाया जाए.
Now if a thorn gets into your foot, how long will you wait till you take it out?
अगर एक कांटा आपके पैर में चुभ जाए तो आप कितनी देर इंतजार करेंगे उसे निकालने के लिए?
You won't even wait 5 seconds.
5 सेकंड भी आप उसका इंतजार नहीं करेंगे.
Whatever work you are doing, you'll stop.
जो भी आप काम करते रहेंगे वही रोक देंगे.
And say, I've got to take that out first, otherwise it'll destroy my foot more.
और आप ये कहेंगे कि इसे मैं अभी निकाल दूंगा, नहीं तो मेरे पैर को नाश कर देगा.
When you hurt somebody,
लेकिन आप ये किसको अगर आप दुखी करते हैं, खेदित करते हैं,
you have hurt him with your words.
आपके शब्दों से किसको आप घायल करते हैं.
But you have hurt your own conscience much more.
आपने अपने हृदय को, अपने विवेक को ज्यादा ठेस पहुंचाई है.
See, when people call Jesus Beelzebul, Prince of Devils,
जब यीशु को लोगों ने शैतान और शैतान का राजा कहा, सेना का,
did it hurt Jesus?
क्या ये बात से यीशु मसीह को दुख हुआ, खेद हुआ?
No, you couldn't hurt him.
ये उसे खेद नहीं कर सका.
You cannot hurt Jesus.
ये यीशु मसीह को खेदित नहीं कर सकता.
They hurt themselves.
उन्होंने खुद को खुद दुखी किया.
If people call me the devil, they're not going to hurt me.
अगर लोग मुझे शैतान कहते हैं, मुझे नहीं दुख पहुंचाते.
They hurt themselves.
वो खुद को दुख पहुंचाते हैं.
Anybody who tries to hurt me is actually hurting himself.
अगर कोई मुझे दुख देना चाहता है वो खुद को दुख देता है.
So when you say something which hurts somebody, actually you have hurt yourself.
अगर आप कहते हैं और किसको दुख होता है तो वास्तव में आपने खुद को दुखी कर दिया है.
A thorn has got into your foot, a bad conscience. A bad conscience is like a thorn in your foot.
बुरा विवेक एक ऐसा है कांटे के जैसा आपने पैर में.
How long are you going to wait till you take it out?
अगर आप उसे निकाल नहीं देते कितना देर आप इंतजार करेंगे?
You must go immediately.
आप तुरंत उसे निकाल देंगे.
Ask the Lord to forgive you.
परमेश्वर से प्रार्थना करो आपको क्षमा करें.
And go to your husband or wife and say, I'm sorry, please forgive me.
अपने पति और पत्नी के पास जाओ, कहो मुझे क्षमा कर.
But in my anger I said that.
मेरे क्रोध में मैंने यह कह दिया.
I'm sorry, it was my mistake.
मेरी ये गलती है, मैं क्षमा चाहता हूँ.
And you don't allow the devil to come into your home.
और आप अनुमति नहीं देते और मौका नहीं देते शैतान को अपने घर में आने.
And at the same time your conscience will not be destroyed.
और आपका विवेक भी नाश नहीं होगा.
And your relationship in the home is restored.
और आपका संबंध पति पत्नी का घर में वापस जुड़ जाता है.
But if you leave that thorn there,
अगर आप वो कांटा वहीं पर छोड़ देते हैं,
it'll get infected and it'll become pus around it and kill your conscience.
और आपके विवेक को वो घायल करता रहेगा, वहां बीमारी उत्पन्न करेगा और नाश करेगा.
सो दैट्स एज सून एज यू आर अवेयर यू मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस.
और जैसे आपको पता चलता है आप क्षमा तुरंत मांगना चाहिए.
द सेकंड थिंग इज दैट वी मस्ट फॉरगिव आल्सो क्विकली.
और दूसरी बात, हमें तुरंत क्षमा भी करना चाहिए.
यू नो समटाइम्स सम इफ योर husband or wife comes and asks for your forgiveness.
कभी हम देखते हैं कि पति पत्नी हम क्षमा मांगने को जाते हैं.
Sometimes we can act very proud and big.
और हम बहुत ही घमंड में और महान बन के एक्ट करते हैं, वर्ताव करते हैं.
We act as though, well, I'm not going to forgive you so quickly.
और हम ऐसा वर्ताव कहते हैं, करते हैं और दर्शाते हैं कि हम जल्दी से क्षमा नहीं करेंगे.
Because you have behaved so badly for the thousandth time.
क्योंकि ऐसा बुरा वर्ताव आपने कितना अनेक हजारों बार किया है.
Who are you ruining? You're ruining yourself.
आप खुद को नाश कर रहे हैं.
When you don't forgive someone.
अगर आप किसको क्षमा नहीं दे रहे तो खुद को नाश कर रहे हैं.
I use my imagination sometimes to think how God is doing things in heaven.
मैं कभी कभी अपने मन से बुद्धि सोचता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग में कैसे कार्य कर रहा है.
You know, this earth is full of so many people who do wrong things.
ये धरती बहुत ही ऐसे लोगों से जो बहुत बुराई कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, भरी हुई है.
And there are many people asking God from the earth, Lord, please forgive me.
और कितने लोग हैं यहाँ धरती से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर.
So many, if you think of in one day, how many people are on the millions of people are saying, Lord, please forgive me, forgive me, forgive me.
हम कल्पना करेंगे कितने लाखों लोग दिन में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं.
Even unbelievers.
अविश्वासी भी.
Oh God, forgive me.
ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर.
What is God doing in heaven?
परमेश्वर स्वर्ग में बैठा क्या कर रहा है?
Is immediately forgiving.
वो तुरंत क्षमा कर देता है.
He doesn't wait for somebody and say, okay, I'll tell you tomorrow whether I've forgiven you or not.
वो इंतजार नहीं कहता, ये नहीं कहता मैं आपको क्षमा किया है नहीं, कल बताऊंगा.
Immediately forgiven.
तुरंत क्षमा कर देता है.
And then somebody else from there is asking for forgiveness, forgiven.
वहां से कोई क्षमा मांग रहा है, जल्दी क्षमा कर दिया.
The other side of the earth, somebody is asking forgiveness, forgiven.
धरती के इस कोने से, इस जगह से कोई क्षमा मांग रहा है, तुरंत क्षमा कर दिया.
I use my imagination to think what God is doing all the time.
ये मेरे मैं कल्पना में सोचता हूँ परमेश्वर वहां बैठकर क्या कर रहा है.
You know what he's doing?
आप देखते हैं क्या कर रहा है परमेश्वर.
He's saying forgiven, 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 forgiven. That's what he's doing all the time.
हर समय वो क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया, ये कह रहा है.
All the time.
हर समय.
What about tomorrow?
तुम्हारा कल के लिए क्या?
Forgiven, forgiven, forgiven. This he's doing all the time.
पूरे समय वो ये कह रहा है, क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया.
Many of us say, Lord, I want to be like you.
बहुत कहते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमें आपके जैसा बनना है.
Why not be like him in this area?
इस क्षेत्र में हम उसके जैसा क्यों नहीं बन रहे?
As soon as somebody asks forgiveness, forgiven, sure.
कोई आपसे क्षमा मांगता है, तुरंत आप क्षमा कर दो.
Okay, one minute later they do the same thing again. One minute later.
एक मिनट बाद में वही गलती वो दोहराता है.
Forgiven.
क्षमा कर दीजिए.
After one minute, again the same thing.
एक मिनट के बाद वैसी गलती, क्षमा कर दिया.
Forgiven. If you want to be like God,
आपको अगर परमेश्वर के जैसा बनना है,
be rich in mercy.
दया में धनवान हो जाइए.
It's the most important area for us to be rich.
हमारे लिए यह धनवान बनने का बहुत बड़ा क्षेत्र है, दया करना.
I remember once one married couple came to see me. They were not from our church, from some other church.
दूसरे किसी कलीसिया से एक पति पत्नी मुझसे मिलने आए.
I didn't know them. They had read some book of mine.
मैं उन्हें नहीं जानता, उन्होंने मेरा कोई पुस्तक पढ़ा था.
They came rushing into my house one day.
वे दौड़ते हुए मेरे घर में आए एक दिन.
He said, "Brother Zach, we got to catch a train in a few minutes."
भाई हमें ट्रेन तुरंत ट्रेन पकड़नी है थोड़े समय में.
Can you give us some quick advice for our married life?
हमारे वैवाहिक जीवन के लिए क्या सलाह हमें दे सकते आप?
They didn't even sit.
वे बैठे भी नहीं.
They have to rush.
उनको घाई था.
I said, okay.
मैंने कहा ठीक है.
I said, ask forgiveness quickly.
मैंने कहा क्षमा मांगिए जल्दी.
And forgive quickly.
और क्षमा कीजिए जल्दी.
Okay, go and catch your train now.
अभी जाइए आपका ट्रेन पकड़िए.
You'll have a very happy married life.
आपको बहुत ही आनंदित वैवाहिक जीवन मिलेगा.
In almost all marriages that I conduct nowadays.
ये इन दिनों जो भी मैंने शादियां लगाई है.
I tell people this.
मैं ये लोगों को बताता हूँ.
Before you go to bed at night,
अगर आप रात में सोने को जा रहे हैं उससे पहले,
just make sure that everything is settled between you and your husband and wife.
इस बात को निश्चय कर लीजिए कि तुम्हारे बीच में, दोनों के बीच में हर चीज का सुलह हो गया है.
Don't keep any retained anger in your heart.
पिछला कोई भी दुख और क्रोध अपने दिल में न रखिए.
Or any unforgiven matter.
और न क्षमा किए वाला कोई ऐसी बात अपने दिल में मत रखिए.
Get rid of it.
उससे छुटकारा पा लीजिए.
Just like you throw away bad food.
जैसे आप अच्छा खाना नहीं है उसे फेंक देते हैं.
You don't keep it.
वो आपसे रखते नहीं है.
Because if you keep it, it'll stink tomorrow.
अगर हम उसे रख देते हैं तो दूसरे दिन वो बदबू करता है.
So at night, it says in Ephesians 4, verse 26.
इफिसियों का चौथा अध्याय 26वां वचन ये कहता है.
Don't let the sun set on your anger.
आपके क्रोध पर सूर्य अस्त न होने दो. सूर्य अस्त होने तक आपका क्रोध न रहने दो.
That means in the old those days people used to go to sleep when the sun set.
इसका मतलब यह दर्शाता है कि पिछले दिनों में जूने में लोग क्रोध करते ही सो जाते थे.
नहीं नहीं When the sun was setting, they go to sleep.
हाँ, जब सूर्यास्त हो जाता था, लोग सोने चले जाते थे.
So you're saying before you go to sleep, get rid of your anger. That's
the meaning. तो यहाँ बताया गया है कि अगर आप सोने को जा रहे हैं, उससे पहले अपने मन से क्रोध निकाल दो.
So a brother came to me.
तो भाई मेरे पास आए.
Said, Brother Zach, you married, you conducted our marriage 20 years ago.
20 साल पहले आपने हमारी शादी लगाई.
And you gave us this advice.
और ये सलाह आपने हमें दिया.
At our wedding. At our wedding,
हमारे शादी के समय में
don't go to bed without settling all matters between both of you.
सोने को नहीं जाइए इससे पहले कि आपने सुलह सब बातों के विषय में कर लिया है.
And he said, I want to testify today.
और मैं ये आज चेक करना चाहता हूँ.
There's a brother from our church in
हमारे
Bangalore.
का भाई है.
I've kept that word every day for 20 years.
20 साल मैंने उस बात को निभाया है.
I said, praise the Lord.
मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो.
That's a greater miracle than raising the dead.
ये मुर्दे को जिंदा करने से बड़ा चमत्कार है.
What a testimony.
क्या ही उम्दा साक्षी है.
Is it very difficult?
क्या ये बहुत ही कठिन है.
Supposing I tell you, before you go to bed, remove all the thorns from your feet, then only go to sleep.
अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सोने से पहले अपने पैरों में से सब कांटे निकाल दियो और फिर जाओ सोने को.
You say, Brother Zach, you mean, can't I do it once a week or something? Why, every day I've got to remove all the thorns from my feet?
क्या आप मुझसे प्रश्न करोगे भाई जैक, क्या मुझे अनुमति नहीं मिलेगी कि सात दिन में मैं इन सब कांटों को निकालूं?
Every day?
हर दिन मुझे निकालने पड़ेंगे.
You don't wait till sunset to remove thorns from your feet. You remove it immediately.
सूर्यास्त होने तक अपने पैर से कांटा निकालने के लिए आप इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत आप निकाल देंगे.
I think this Ephesians 4:26 is for half-hearted people.
ये इफ़सीए 4:26 वचन आधे अधूरे हृदय वाले लोगों के लिए है.
होल हार्टेड पीपल विल वोंट वेट टिल सनसेट, दे विल सेटल इट इमीडिएटली.
पूरे हृदय के पक्के लोगों के लिए वो आप काटा जल्दी से ये वचन को पालन कर देंगे.
दीज आर द लिटिल थिंग्स व्हिच द डेविल ब्रिंग्स इन टू रुइन अ मैरिज.
ये छोटी सी बातें हैं जो शैतान हमारे जीवन में लाकर हमारे वैवाहिक जीवन को नाश करता है.
व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ Accusing and criticizing people.
लोगों को दोष लगाना, उनकी निंदा करना, इसके विपरीत उल्टा क्या है?
That is learning to appreciate people.
ये सीखना है लोगों की प्रशंसा करना.
Now I want to read you something from the Bible.
मैं आपके लिए कुछ परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा.
You will think it is from some Hindi movie.
आप ये ऐसा सुनेंगे जैसे कोई हिंदी पिक्चर में से सुनाया जा रहा है.
इट्स नॉट अ हिंदी मूवी.
ये हिंदी मूवी नहीं है.
हाउ ब्यूटिफुल यू आर माई डार्लिंग, हाउ ब्यूटिफुल यू आर.
मेरी सुंदरी तो कितनी सुंदर है.
सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 15.
श्रेष्ठ गीत सोलोमन का
चैप्टर 2. Chapter 2, verse 15.
श्रेष्ठ गीत इसका दूसरा अध्याय और 15वां वचन
पढ़िए.
2:15.
15.
हमारे लिए
द सॉन्ग ऑफ सोलोमन
श्रेष्ठ गीत
चैप्टर 2. ओ सॉरी चैप्टर 1
चैप्टर
1 वर्स 15.
15वां वचन पहला अध्याय. तू कितनी रूपवती है मेरी प्रिया, तू कितनी रूपवती है, तेरी आंखें कबूतरी के समान है.
Have you once in your life said that to your wife?
क्या आपने जीवन में आपने एक बार भी अपने पति से यह कहा है?
Once.
एक बार.
Okay. Now that all the sisters are very happy.
अब सब बहनें खुश हैं.
I want to ask the sisters. Have you ever said verse 16?
सोलह वचन क्या आपने
to your husband?
अपनी पत्नियों से कहा है.
हाउ हैंडसम यू आर,
तू कितना माय बिलवड,
माय यू आर सो प्लेजेंट,
तू कितना सुंदर है मेरे प्रियतम और कितना मन भावना है.
सी दिस इज नॉट अ हिंदी मूवी, दिस इज द बाइबल.
ये हिंदी पिक्चर नहीं है लेकिन ये परमेश्वर का वचन है.
The Lord wants us to learn to appreciate one another.
परमेश्वर ने चाहता है सिखाना एक दूसरे की प्रशंसा करना.
Why are we only ready to find fault?
हम ऐसे क्यों है कि दोष ढूंढने वाले हैं?
Supposing I were to give you all a piece of paper.
अगर मैं आपको एक पन्ना देता हूं खाली कागज.
Without thinking, quickly write down three good things about your husband or wife.
अपनी पत्नी या पति के लिए जल्द से जल्द तीन अच्छी बातें लिखिए.
And write three bad things about your husband and wife.
और तुरंत जल्द से जल्द अपने पत्नी या पति के लिए तीन बुरी बातें लिखिए.
Which will you be able to write quicker?
कौन सी बातें आप जल्द लिखेंगे?
Which will you have to think?
किसके लिए आपको सोचना पड़ेगा?
There you know.
वहां आप जानते हैं.
Whether you are more like the devil or more like Jesus Christ.
आप ज्यादा शैतान के जैसे हैं या प्रभु यीशु मसीह के जैसा?
Can you immediately think of three good things that your husband is God?
क्या आप तुरंत तीन अच्छी बातें अपनी पत्नी या पति के लिए
सोच सकते हैं? Or your wife is God?
अपनी पत्नी के लिए?
The devil makes us forget those things.
शैतान हमें उन चीजों को भुला देता है.
Song of Solomon is a wonderful book.
श्रेष्ठ गीत एक अच्छा पुस्तक है.
Today we know it's a picture of Christ in the church also.
आज हम यह देखते हैं कि ये यीशु मसीह और उसकी देह कलीसिया उसकी पत्नी के विषय में भी.
But before Jesus came to earth,
पर पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने से पहले,
and before there was a church,
और इस पृथ्वी पर कलीसिया बनने से पहले,
for 1000 years after Solomon wrote it, what was it referring to?
1000 वर्ष पहले इसके जब उस सोलोमन के श्रेष्ठ गीत में सुलेमान के लिखा गया वो क्या दर्शाता था?
For the 1000 years up to the coming of Christ, what was this book referring to?
ये बुक क्या दर्शाता और दिखाता था 1000 साल यीशु मसीह के आने से पहले?
It was talking about husband wife relationship.
ये पति और पत्नी के संबंध के विषय में कहता है.
The Lord was saying, I want you to appreciate one another.
परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे की प्रशंसा करें.
Very often problems arise because we are quick to criticize but very slow to appreciate.
अक्सर ये हो जाता है कि हम दोष देने में बहुत उतावले और आगे रहते हैं प्रशंसा करने में बहुत पीछे रहते हैं.
So we need to change that attitude.
हमें ऐसा स्वभाव को बदलना है.
And say, Lord, I want to learn to be quick to appreciate.
और मैं पर हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मैं सीखना चाहता हूँ किसकी प्रशंसा करना.
You know, Jesus was like that.
यीशु मसीह ऐसा था.
Even in some of the worst churches in Revelation chapter 2.
प्रकटीकरण के दूसरे अध्याय में बहुत बुरे स्थिति में गई हुई कलीसियाओं के लिए भी.
You know, one church is so bad in chapter 2.
दूसरे अध्याय में चर्च की ऐसी बुरी दशा है.
The Lord says, if you don't listen to me, I'm going to take away the lampstand and you won't be a church anymore.
और परमेश्वर वहां कहता है अगर आपने बदल सुधार नहीं रहा है तो मैं पवित्र आत्मा को वहां से निकाल दूंगा.
Because you have left your first love.
क्योंकि आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है.
But see how he begins the letter.
पर हम देखेंगे वह उस वचन को शुरुआत कहां से करता है.
Chapter 2.
दूसरा अध्याय.
To the leader of the church in Ephesus write.
इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख.
See, this is the bridegroom speaking to the bride, the husband speaking to the wife.
ये पति अपनी पत्नी से बात कर रहा है.
Jesus is the husband and the church is the bride.
पति यीशु मसीह है और दुल्हन कलीसिया है.
ओके, व्हाट इज ही सेइंग?
देखिए हम कहां क्या कह रहे हैं परमेश्वर.
वर्स 2.
दूसरे वचन में.
आई नो योर डीड्स.
मैं तेरे कार्यों.
आई नो योर टॉयल.
परिश्रम.
परसिवियरेंस.
और धैर्य को जानता हूँ.
यू कैनॉट एंड्योर इविल मैन.
और यह भी कि तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता.
यू पुट टू द टेस्ट दोज हू कॉल देमसेल्व्स अपोस्टल्स एंड यू फाइंड दे आर फॉल्स.
और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं तूने उन्हें परखा है और झूठा पाया है.
यू हैव परसिवियरेंस.
तुझ में धैर्य है.
यू हैव एंड्योर्ड फॉर माई नेम सेक.
और तूने मेरे नाम के कारण दुख उठाते हुए
नॉट ग्रोन वेरी. यू हैव नॉट ग्रोन वेरी. व्हाट अ वंडरफुल चर्च.
अच्छा कितना उत्तम कलीसिया है.
नो ही सेज़ बट आई हैव गॉट समथिंग अगेंस्ट यू.
लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं मुझे आपके विरुद्ध में एक बात कहना है.
He says all these words of appreciation, then he says the one thing.
ये सब प्रशंसा के शब्द कहने के बाद परमेश्वर एक शब्द कहते हैं.
Which is the worst church to which Paul wrote?
कौन सी सबसे बुरी कलीसिया थी जिसे यीशु पॉल ने लिखा पत्र.
Corinthians.
Corinthians.
They had so many things wrong with them.
उनमें बहुत सी बुराइयां थी.
So many sins.
बहुत पाप थे.
They were taking people to court against each other.
एक दूसरे को लोग कलीसिया के कोर्ट में ले जाते थे.
They were tolerating adultery.
और वे व्यभिचार करते थे.
And he writes to them in 1 Corinthians 1.
1 को एक कोरिन्थियों पहला अध्याय
verse 4.
चौथा वचन
आई थैंक गॉड ऑलवेज फॉर यू
मैं परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करता हूँ तुम्हारे लिए
यू आर एनरिच्ड वर्स 5 इन हिम इन ऑल स्पीच ऑल नॉलेज
तुम अपने परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर बढ़ रहे हो
वर्स 7 यू आर नॉट लैकिंग इन एनी गिफ्ट
सातवें वचन में किसी भी दान में तुम्हारे अंदर कमी नहीं है
ही विल कंफर्म यू इन द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट वर्स 8
यीशु मसीह के दिन में ये दावा करता हूँ
देन ही सेज नाउ वर्स 10 आई हैव गॉट टू टेल यू समथिंग
और दसवें वचन में पौलुस कहता है मुझे कुछ कहना है
इट्स अ लिटिल प्रिंसिपल
छोटे कानून
वी हैव टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ अप्रिशिएटिंग
हमें हमारे अंदर ये आदत को बढ़ाना है प्रशंसा करने की
विद आवर चिल्ड्रन ऑल्सो
हमारे बच्चों में भी
वी क्रिटिसाइज देम सो क्विकली
हम बच्चों को जल्दी दोष लगा देते हैं
Aren't there some good qualities in your children?
आपके बच्चों में क्या कोई अच्छी खूबियां नहीं है
Learn to appreciate them.
उनको प्रशंसा करने की आप सीखो
They will change much quicker.
और वे तुरंत बदलेंगे
The Bible says God leads us to repentance by kindness. God leads us to repentance by His kindness.
परमेश्वर अपनी दया से हमें पश्चाताप की ओर ले आता है
That is Romans 2:4.
रोमियो दूसरा अध्याय चौथा वचन में
We can also lead our children to repentance by kindness.
हम भी अपने बच्चों को पश्चाताप की ओर नम्रता से दया से ले आ सकते हैं
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना
Let's ask God to give us the power of the Holy Spirit to obey all that we have heard. And let's pray that God will fill us with the Holy Spirit so that we can respond to what we have heard. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen.